sounds like the moon.
Yes, it's true. Yes, it's true. Yes, it's true.
Yes, it's true. Man, even if it's true.
Yes, it's true.
Yes, it's true, man, it even for true.
Yes, it's true. Yes, it's true. Yes, it's true. Yes, it's true.
خدام یسو مسیح کے نام میں میں اپنے تمام ویورس کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج اس بات سے خوش ہوئے ہوں گے کہ میں کافی عرصے کے بعد یعنی آفٹر 5 ویکس آپ کی خدمت میں خدا کا کلام خدام یسو مسیح کی انجیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور شیطان اس بات سے خوش نہیں ہے اور جو اس کے پجاری ہیں وہ بھی اس بات سے خوش نہیں ہے کیونکہ خدا اپنی انجیل کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور شیطان اس کو روکنا چاہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند خدا فتح مند ہے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں نا اس کا شکر کرتے ہیں اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں اس سے زیادہ آگے بڑھیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کرسمس کا پروگرام ہے وہ جرمنی میں ہوگا یعنی 16 تاریخ کو سیٹرڈے کو دوپہر 3 بجے تو سب لوگوں کو اس پروگرام میں پاسٹر طارق بھٹی صاحب اور ساری کلیسیا کی طرف سے دعوت ہے جتنے لوگ جرمنی میں رہتے ہیں یا یورپ سے اگر کہیں سے بھی اور لوگ تشریف لانا چاہیں آنا چاہیں تو سب کو خوش آمدید ویلکم جی آیا نو اور پاسٹر طارق بھٹی صاحب کی طرف سے سب کو انویٹیشن ہے سبھی لوگ آ سکتے ہیں اور میری طرف سے بھی سب کو انویٹیشن ہے یاد رکھیں 16 دسمبر کو کرسمس کے حوالے سے یہ عبادت ہوگی تو آپ بے شک کرسمس 16 دسمبر کو تو نہیں ہے وہ 25 دسمبر کو ہے لیکن کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہم کرسمس اصل میں سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایکچولی تو 2 مہینے پہلے ہی ہر طرف یورپ میں کیا بلکہ پوری دنیا میں ایک طرح سے کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک کسی عام شخص کی برتھ ڈے نہیں ہے کیونکہ کسی شخص کی برتھ ڈے اس وقت تک منائی جاتی ہے جب تک وہ شخص زندہ ہوتا ہے اور اس کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد چلے جانے کے بعد اس کی برتھ ڈے نہیں بلکہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو دیسی لوگ ہیں ہم یہ لفظ برسی استعمال کرتے ہیں ہم سال کے بعد ان کے دنیا سے چلے جانے کا افسوس ہوتا ہے ہمیں ہم برسی مناتے ہیں یا برسی کرتے ہیں یا ان کی یاد دہانی کے لیے جو شخص بھی دنیا سے چلا گیا ہو لیکن خدا کی تعریف ہو خدا یسوع مسیح کی برسی کبھی بھی منائی نہیں جاتی بلکہ خدا یسوع مسیح کے 2 دن جو بڑے ہیں ایک ان کا اس دنیا میں آنے کا دن یعنی کرسمس یا خدا یسوع مسیح کا برتھ ڈے جو ہے جو کلیسیا نے دن ٹھہرا ہوا ہے 25 دسمبر اور دوسرے نمبر پر خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو ہم مناتے ہیں تو ہم اس کے لیے سارا جلال خدا یسوع مسیح کو دیتے ہیں اور میں ابھی سے جتنے ویورز ہیں ہم سب کو ابھی سے کرسمس کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں بلکہ ہر منگلوار کو مبارکباد دیا کروں گا جب تک کرسمس کا دن گزرتا نہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور میں تمام لوگوں کے پیار کے لیے بہت شکر گزار ہوں جو میرے 4-5 ہفتے نہ آنے کی وجہ سے کنسرن تھے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے اور वो ढूंढ ढांड कर कहीं से पता करते रहे कि मैं कहां पर हूं, व्हाट हैपन टू पास्टर नईम। तो लेकिन ये कभी एक ब्रेक के लिए मुझे जाना पड़ा, तो आई थैंक गॉड फॉर दैट, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। रोमियों 8 और उसकी 28 और 29 आयत जरूर आप पढ़िएगा, खासतौर पर 28वीं आयत जो रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। तो हम खुदा की तारीफ करते हैं, तो मैं आपको खुदा के कलाम की तरफ ले चलता हूं। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील और उसका 14 और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 13 आयत से शुरू करके उसकी 21वीं आयत तक। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13-21 लिखा है कि जब यीशु ने यह सुना तो वहां से कश्ती पर अलग विराम जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल लॉर्ड वी सर्व। उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे, यानी इनको इनके घर में वापस भेज दे, ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। और यीशु ने उनसे कहा कि इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहां हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा वो यहां मेरे पास लाओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेव हो गए, पंजाबी में राज गए सारे, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के अलावा 5,000 मर्द के करीब थे। आमीन। एक लंबी लंबी दुआ करेंगे। अपेरे आसमान बाप, अपेरे खुदा यीशु मसीह, अंतरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। हम जानते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, और तेरी मानंद आसमानों के आसमान और कायनात में कहीं पर कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है, क्योंकि तू कादर मुतलक है, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। तेरा शुक्र है तू दुनिया से मोहब्बत रखता है, और तेरी मोहब्बत लाजवाल है, तेरी मोहब्बत ना खत्म हुई थी, ना खत्म हुई है, ना खत्म हो सकती है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, और प्यारे खुदा यीशु मसीह हम तेरे खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सारी नाराजगी से पाक करता है, और तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा दूसरा मददगार है, और तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। हम तेरा शुक्र करते हैं, और मैं दुआ करता हूं आज शाम जितने लोग तेरा कलाम इस वक्त सुन रहे हैं और बाद में भी जब YouTube के जरिए या मुख्तलिफ जराय से मीडिया के वसीला से तेरा कलाम सुनेंगे, तो लोगों की जिंदगी को छूना, बरकत देना, रहाई बख्शना। और जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि जब तूने भीड़ को देखा तो तुझे उन पर तरस आया, तूने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया, उनके बीमारों को अच्छा कर देना। और मैं विवेक के लिए भी दुआ करता हूं उसे रिहाई बख्श दे, सारे बंधन खुदा यीशु मसीह के नाम से उसकी जिंदगी से टूट जाएं, गिर जाएं खुदा यीशु मसीह के नाम से। और आसमानी बाप, मैं बहन शिबा की मां के लिए भी दुआ करता हूं, उन पर रहम कीजिए, उन्हें छू कर सर से पांव तक मुकम्मल रिहाई और आजादी बख्श दीजिए और उन्हें आराम दीजिए, आराम में दाखिल कीजिए, अपने नाम के जलाल की खातर दुश्मन के सारे बंधन टूट जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा खादिम होता हुआ हर तरह की शैतानी क्रोधों को और मुखालफत की हर रूह को खुदा यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ और उन्हें खुदा यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ इसी लम्हे खारिज हो जाए, चल जाए, रिमूव हो जाए। और तेरा मसा यहाँ स्टूडियोज में भी और जहां जहां जब भी ये कलाम सुना जाएगा तेरा मसा बड़े जोर से लोगों पर उतरेगा खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, प्रेज गॉड। सबसे पहले खुशी की बात तो यह है कि यहां पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जब कश्ती पर बैठकर अलग किसी जगह रवाना हो गए तो लोग पैदल ही, क्योंकि उन दिनों में कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी कि लोग बसों में या ट्रालियों में बैठकर कहीं पर गाड़ियों में बैठकर जाएं और खुदा यीशु मसीह का पीछा करें, तो पैदल ही बाल बच्चे समेत, क्योंकि यहां पर जिक्र हमने पढ़ा है 21वीं आयत में कि औरतों और बच्चों के सिवा 5000 के करीब मर्द थे, 5000 मर्द। और आप दुनिया की किसी भी मीटिंग में चले जाएं जहां पर हीलिंग क्रूसेड हो रहा हो, कोई कन्वेंशन हो रही हो, या चर्चेज में भी आप जाएं तो आपको वहां पर जो बहनें हैं, औरतें जो हैं, वो ज्यादा मिलेंगी और बच्चे भी बेशक उनके साथ होते हैं। मर्द हजरात के निस्बत उनकी एवरेज ज्यादा होती है, तो इसका मतलब 5 से 7 हजार औरतें थी और साथ एक एक दो दो बचे तो होंगे, इसका मतलब 10,000 बच्चे भी होंगे। तो बच्चों समेत ही उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया और उस संत में, यानी उस पासे उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया जिस तरफ खुदावंद यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर गए थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को देखा कि हजारों हजार लोग जो हैं, हजारों हजार लोग मेरे पीछे ही चले आ रहे हैं, तो कश्ती से उतरे और लोगों को देखकर खुदावंद यीशु मसीह का दिल रहम से भरा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आया। अब जब तरस आया तो पहला काम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर, खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले उनके बीमारों को अच्छा किया। अब जो बीमार लोग होते हैं, जो लोग सफर करते हैं, हम सभी जितने इंसान हैं, कभी ना कभी जिंदगी में हमने बचपन में या टीनेज में या जवानी में या बुढ़ापे में कभी ना कभी हम बीमारी का सामना करते हैं। कई दफा ये बीमारी कुछ दिन लंबी हो जाती है, कई दफा बहुत ही लंबी हो जाती है, या हमारे खानदान का कोई फर्द या हमारी माँ या बाप, बहन भाई या बीवी या बच्चे या शोर कई दफा लंबे अरसे तक बीमार रहता है। तो हम सभी जानते हैं कि बीमार होना जो है इट्स ए टेरेबल थिंग और यह काबिले बर्दाश्त किसी वक्त नहीं होता। तो लोग, इसका मतलब यह है कि अपने मरीजों को लेकर खुदा यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। सिर्फ सेहतमंद लोग ही नहीं बल्कि औरतें अपने बच्चों को साथ लेकर और अपने जो मरीज थे उनमें, जो पेशेंट्स थे, उनको लेकर खुदा यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे। इसका एक मतलब तो यह भी था कि उन लोगों के पास ये मुकाशफा, ये रेवलेशन था। इसका मतलब उनके पास ये प्रकाश था कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है और खुदावंद यीशु जो है यही मसीह है, यही सारी मुश्किलों का हल है और यही मसीह जो है यही शाफी है, यही बचाने वाला है, यही नजात देने वाला है, यही मुक्ति देने वाला है। इसलिए वो अपने बीमारों को साथ साथ लेकर चलते रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि बीमारों को घर ले जाओ। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहां जाते हैं, फिर वहां पर जाकर हम देखेंगे हम आगे प्लान क्या करते हैं। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या खुदावंद यीशु मसीह की तलाश करते हैं या खुदावंद यीशु मसीह की सिमत में जाते हैं या खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं या खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढते हैं या खुदावंद यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, तो फिर हम सब कुछ भूल कर फिर पूरे दिल के साथ अपने हालात की परवाह किए बगैर हमारे पास कुछ है या नहीं है, हमने कुछ खाया है या पिया है, यह सोचने के बगैर हम खुदा यीशु मसीह की तलाश जब करते हैं, जब उसका पीछा करते हैं, जब उसको पुकारते हैं, जब उसकी आवाज के पीछे चलते हैं, तो खुदा यीशु मसीह तरस से भरे हैं, उनका रहम बाहर निकल आता है, उनका तरस हम पर जहर होता है और वो हमारे बीमारों को बल्कि हमें भी शिफा दे देते हैं। हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं। प्रेज गॉड। पहला प्रिंसिपल जो है, पहला असूल जो है, हमारे पास जब कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती, जब हम खुदा के पास आते हैं तो हम कोई दूसरा तरीका पीछे रख कर नहीं आते। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम ऐसा कर लेंगे। जब हम पूरे दिल से, क्योंकि कलाम में खुदा ने फरमाया है कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो गए, यर्मिया की किताब उसका 30 बाब और उसकी 22वीं आयत, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 30 वर्स 22, खुदा ने फरमाया कि जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब हो गए, मुझे ढूंढोगे तो मुझे पालोगे और तुम मेरे लोग हो गए और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। जब खुदा ही हमारा सब कुछ है, जब खुदा ही को हम सब कुछ मान लेते हैं, जब खुदा हमारी जिंदगी का सेंटर बन जाता है, जब हमारी आंखें ही खुदा पर लगी रहती हैं, ये तो 3 दिन तक अपने मरीजों समेत खुदा यीशु मसीह के पीछे फिर रहे थे। वो डिस्करेज नहीं हुए, डिसहार्ट नहीं हुए, उनका दिल छोटा नहीं होया। ऐसा नहीं कि वो हिम्मत हार गए हों कि मसीह ने शिफा नहीं दी पहले दिन, दूसरे दिन भी शिफा नहीं मिली। हम नहीं जानते कि खुदा यीशु मसीह ने 3 दिन तक उनको शिफा क्यों नहीं दी, क्योंकि खुदा कई दफा हमें भी टेस्ट करता है कि हमारा ईमान कहां पर है। आर वी विलिंग टू फॉलो हिम? क्या हम उसके पीछे वाकई ही चलना चाहते हैं या एकदम से शिफा मिल गई और भाग गए? मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं अपनी 27 साल की खिदमत में। मैंने देखा कि लोग आते हैं चर्च में, वो दुआ कराते हैं, या मिनिस्ट्री में आते हैं, वो दुआ कराते हैं, शिफा पाते हैं या बरकत पाते हैं, माली बरकत पाते हैं, और उनके हालात जब ठीक हो जाते हैं वो भाग जाते हैं। बाद में तो वो फोन मैंने कई तो ऐसे बहन भाई हैं, कई दोस्त मैंने ऐसे देखे हैं कि वो बाद में फोन का जवाब तक नहीं देते। एंड इट्स अ टेरिबल थिंग। वो जानते नहीं कि कल क्या होगा, कल सब कुछ रिवर्स भी हो सकता है, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें खुदा के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वही तो, अगर वो हमारा, अगर खुदा पर हमारी नजरें लगी हुई हैं, अगर खुदा ही हमारा मास्टर प्लान खुदा है, अगर हम सिर्फ खुदा पर फोकस करना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ खुदा यीशु मसीह को सब कुछ मान लेते हैं, तो फिर वो खुद ही हमारे लिए राहें पैदा कर देता है, खुद ही वो सब कुछ मुहैया भी कर देता है, हमारे सारे काम वो खुद ही कर देता है। अजीज बहनों भाइयों, हो सकता है कि आज शाम या इसके बाद जो लोग मुख्तलिफ मीडिया के वसीला से इस कलाम को सुनेंगे, हो सकता है आप बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो, आप बंद हो और आप कहीं मैं निकल नहीं सकता। जैसे दाऊद पुकार उठे, जब हम जबूर 86 पढ़ते हैं, उसकी 8 से 16 तक जब पढ़े तो वहां पर लिखा है खुदा मैं बंद हूं और मैं निकल नहीं सकता। कई दफा हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, हम बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से चेन्स, चारों तरफ से जैसे सुलाखों के अंदर कैद की हालत में हम चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात में हम घिर जाते हैं, हम वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, हम उन जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, हम जो दरवाजे बंद हो गए हम उनको खोलना चाहते हैं ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम बाहर निकलें, ताकि कैद के बंधन जो है वो टूट जाए, लेकिन वो टूटते नहीं। यही हालत दाऊद की भी थी, इसलिए वो कहते हैं मैं बंद हूं और मैं निकल नहीं सकता है खुदा। तो अगर हम बंद भी हों तो कादर मतलब खुदा अपनी कुदरत से हमें निकाल देगा। अब देखें कि कलाम में हम पढ़ते हैं रसूलों के अमाल उसका 16 बाब, उसकी 16 आयत से लेकर उसकी 33 यानी पंजाबी 33 आयत तक जो उसी पढ़ने द बुक ऑफ एक्ट्स या रसूलों के करतब प्रेरितों के काम उसका 16 बाब उसकी 16 आयत से लेकर के उसकी 33 वर्स 33 तक, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 16 to 33। तो वहां पर लिखा है कि जब पलोस और सलास को माफ कीजिए कैद में डाल दिया गया और बेड़ियों में उनको जकड़ दिया गया ताकि वहां से वो हिल ना सके, और ऐसी बेड़ियां उनको पहनाई गई कि वो शायद उठकर बैठ भी नहीं सकते थे, वो लेटे हुए थे और बेड़ियों में जकड़े हुए थे बुरे तरीके से, उनको ऐसे बांध दिया गया था और उनके पहरे के लिए वहां पर सूबेदार, सिपाही भी नहीं सिर्फ बल्कि सूबेदार भी वहां पर मौजूद था, शायद चंद सिपाही भी साथ होंगे ऑफ कोर्स, और ऐसा जबरदस्त तरीके से उनको बंद कर दिया गया था कि अगर वो उनको कोई छुड़ाना भी चाहे तो छुड़ा नहीं सकता था। पर वो कैद की हालत में भी अपने खुदा को जानते थे, वो जानते थे कि हमारा खुदा कुदरत से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी बेड़ियों की तरफ नजर नहीं लगाई, उन्होंने अपने हालात की तरफ नजर नहीं लगाई, बल्कि उनकी आंखें कादरे मतलब खुदा पर लगी हुई थी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलोहिम एदनाए यहोवा कदूस पर, खुदावंद यीशु मसीह पर उनकी आंखें लगी थी। इसलिए रात को उन्होंने जब बाकी कैदी सो रहे थे उन्होंने प्रस्तुति करना शुरू कर दी, उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए, उन्होंने हमदो सना करने शुरू कर दिए, उन्होंने स्तुति करनी शुरू कर दी कि खुदा तू कैसा आला और जबरदस्त कादर मुतलक है, तू वो खुदा है जो अपनी कौम इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, और तू वो खुदा है जिसने बहरे कुलजम उस बड़े समंदर के दो टुकड़े कर दिए, जब कोई राह नहीं था, जब कोई रास्ता नहीं था कि सारी कौम बच सकती, जब फिरौन अपनी फौज लेकर चढ़ाई कर रहा था, उनको बंदी बनाकर वापस ले जाना चाहता था, कुछ को मार डालना चाहता था क्योंकि वो लाखों की तादाद में थे, उनके पास भागने का बचने का कोई रास्ता नहीं था, और वो ये प्रस्तुति कर रहे थे कि तूने अपनी कौम इसराइल को रिहाई बख्शने के लिए तूने बहरे कुलजम के दो टुकड़े कर दिए, और तू अपनी कौम इसराइल को उस बड़े समंदर में से इस तरह ले गुजरा जैसे खुश्क जमीन पर से, और कलाम में लिखा है कि समंदर का पानी उनकी दोनों तरफ दीवार की मानंद खड़ा था। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, पानी जुम्बिश नहीं कर रहा था, पानी हिल नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि قادر مطلق خدا خداوند یسوع مسیح کے روح کا مسا اس موسیٰ کے عصا کو چھو گیا تھا اور اس عصا کے وسیلے سے اس نے سمندر کو چھو دیا تھا اور جب مسیح کے روح کا مسا کسی کو چھو دیتا ہے تو چیزیں ساکن ہو جاتی ہیں, ٹھہر بھی جاتی ہیں, رک بھی جاتی ہیں, شفائیں ہوتی ہیں, معجزات ہوتے ہیں اور بدوئے اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دشمن کو شکست مل جاتی ہے. خدا ان کے نام کی تعریف ہو. اب پنوس اور سلاس پرستش کر رہے تھے, حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے خدا کا فرشتہ اترا. اب یاد رکھے کلام میں لکھا ہے زبور 22 اور اس کی تیسری آیت, سام 22:3 لکھا ہے خدا تو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے. جب اسرائیلی قوم پرستش کرتی تھی اور اب جب خداوند یسوع مسیح کے لوگ معاف کیجئے مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ جب پرستش کرتے ہیں تو خدا کا روح جنبش کرتا ہے وہاں پر, خدا کا روح لہرتا ہے وہاں پر اور خدا کے خدا کا تخت وہاں پر لگ جاتا ہے اور فرشتے آ کر مقدسوں اور ایمانداروں اور بلیورز کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ فرشتوں نے زمین پر کبھی پرستش نہیں کی تھی, جو پاک فرشتے ہیں, کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں تھا. پہلی دفعہ یہ کام اس وقت شروع ہوا جب مسیح کی پیدائش ہوئی. کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13-14 آیت میں لکھا ہے کہ جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو باہر کچھ چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے اور ایک فرشتہ نہیں بلکہ لکھا ہے فرشتوں کی پاک پویتر جو سورگی دوت ہیں, جو پاک فرشتے ہیں, ایک گروہ آسمان سے اتر آیا اور زمین پر آ کر انہوں نے مسیح کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دی. انہیں پتا تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ آرڈنری بچہ نہیں ہے, یہ کسی انسان کی خواہش یا مرضی سے پیدا نہیں ہوا, یہ انسان کے میل ملاپ سے پیدا نہیں ہوا, یہ بچہ جو ہے یہ تو خدا نے خود جسم لیا ہوا ہے. انہوں نے زمین پر ہی آ کر پرستش کرنا شروع کر دی جب مسیح کی پیدائش ہوئی اور مسیح کا مسا جہاں پر اترتا ہے فرشتے وہاں پر اتر آتے ہیں. عزیز بہن اور بھائیو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے کام, آپ کی دکان, آپ کے بزنس, آپ کے کاروبار, آپ کی زندگی پر خدا کے فرشتے اتریں تو ایک ہی طریقہ ہے, پرستش کریں, تعریف کریں, حمد و ثنا کریں, خدا کے پاک فرشتے اترائیں گے اور آپ کی جو بیڑیاں ہیں جیسے پلوس رسول اور سلاس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب باقی قیدی سو رہے تھے تو یہ دونوں پرستش کر رہے تھے, حمد و ثنا کر رہے تھے, ستوتی کر رہے تھے اور لکھا آسمان سے خدا کا فرشتہ اترا اور جیسے ہی خدا کا فرشتہ اترا جو بیڑیاں تھیں وہ ٹوٹ گئی اور سارے قید خانے کی نیو ہل گئی اور جو صوبے دار تھا اس نے سوچا کہ سب قیدی بھاگ گئے, میں تو اب مر گیا. وہ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا, اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا, مگر مقدس پلوس رسول نے زور سے آواز دی. اس نے کہا اے صاحب اپنے آپ کو قتل مت کر, اپنے آپ کو مت مار, کیونکہ ہم سب یہیں پر ہیں. اور جب صوبے دار نے خدا کے فرشتے کی روشنی دیکھی ہوگی, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے फरिश्ते का फरिश्ते की झलक देख ली हो, यह भी हो सकता है कि फरिश्ते को ही उसने देख लिया हो। तो उसकी आंखें जो थी वो तो खुल गई थी, उसने समझा ये तो आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और वो अब सब कैदियों को रिहाई बख्श दी उन्होंने, मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं, नहीं तो रोमी हुकूमत मेरी फौज जो है वो मुझे कत्ल करेगी, मैं अपने आप को खुद ही मार देता हूं। उसने कहा नहीं साहब, अपने आप को मत मारो, हम सब यही हैं। उसने खुदा की कुदरत का जब काम देखा और उसके साथ जब उसने मुकद्दस पलूस रसूल की आवाज और उसकी दिलेरी देखी, उनकी ईमानदारी देखी, तो उनके कदमों में गिर गया और उसने कहा साहिब हम क्या करें, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि मुक्ति पाऊं। उन्होंने कहा कि तू यीशु मसीह पर ईमान ला, प्रभु यीशु मसीह से नेचा कर, तू खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता मान ले, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा, बच जाएगा। और लिखा है कि वो फिर दिलेरी से पलूस और सलास को अपने घर में ले गया और उनके जख्म धोए और अपने खानदान समेत उसने बपतिस्मा लिया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। तो हम जैसे भी हालात में बंद हो, कैद हो, अगर हमारी आंखें खुदा पर लगी हैं, अगर हम दिनों तक उसके पीछे फिर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तक अपने बीमारों को साथ लेकर पैदल चलना आसान नहीं है, और फिर हजारों के बीच में, हजार हा लोगों के बीच में, जहां ऐसा खाना पीना भी मुयस्सर नहीं था, जहां फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी ये डिस्करेज नहीं हुए, इनकी आंखें मसीह पर लगी थी कि रहम तो यहीं से मिलेगा, शिफा तो यहीं से मिलेगी, कृपा तो इत्थों ही होएगी, करम तो यहीं से होगा, मौजा तो यहीं से होगा। 3 दिन तक अपने मरीजों समेत, बच्चों समेत, खुदा यीशु मसीह के पीछे फिरते रहे। खुदा यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा, तो हमने पढ़ा है 13वीं और 14वीं आयत में, खुदा यीशु मसीह को उन पर तरस आया। ये जो लफ्ज तरस लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह के बारे में बार बार मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह को तरस आया जब उसने एक बेवा को चिल्लाते और कराहते तिहाड़े पांदिया वेख्या, जिसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, जो मर चुका था, उसे दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे। द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 7:11-20, लूका की इंजील और उसका 7वां बाब उसके 11-20 आयत तक, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस बेवा को आहें भरते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए देखा, उसके आंसुओं को खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा, तो लिखा कि उसको भीड़ की मानिंद ही वहां पर लिखा है कि तरस आया, और उसने उस जनाजे को रोकने का कहा, उसके बेटे को छू दिया, मुर्दे को छू दिया, जैसे छुआ मुर्दा उठकर बैठ गया और उसकी मां के सुपुर्द कर दिया, जिसकी जिंदगी की रोशनी जा चुकी थी, उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, खुशियां खत्म हो चुकी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने वो सब कुछ लुटा दिया। आपकी भी जिंदगी से अगर रोशनी और उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो खुदावंद यीशु मसीह को पुकारे, वह पर रहम फरमाएगा, खुशियां बहाल हो जाएंगी, घराने बहाल हो जाते हैं, قومیں بحال ہو جاتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتی ہیں اور اسے پکارتی ہیں. خداوند کے نام کی تعریف ہو. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا. اور میں سوچتا ہوں کہ بیماروں کو خداوند یسوع مسیح روز ہی ٹھیک کرتے تھے, ہر روز without fail, every single day. یہاں تک کہ جب سلیب پر تھے, آپ نے شاید وہ ایک مووی میں نے بھی دیکھی تھی, بن ہور اس کا نام تھا, انگلش فلم تھی بن ہور. تو خدا یسوع مسیح کا خون دراصل جب بہ رہا تھا تو خون اڑتے ہوئے جب کوڑیوں کو جا کر چھو گیا, کوڑی شفا پا گئے تھے. یہاں تک کہ آخری دن بھی, اس سے پہلے کہ خدا یسوع مسیح اپنی جان آپ کے لیے اور میرے لیے دیتے, آخری دن بھی خدا یسوع مسیح معجزہ کر رہے تھے, چاہے وہ صلیب پر ہی تھے. اور اس سے بڑا معجزہ یہ کر دیا کہ فرما دیا صلیب پر سے, اب آپ ان کو معاف کر جنہوں نے مجھے صلیب پر چڑھایا, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. خدا ان کے نام کی تعریف ہو. تو ہر روز معجزے کرتے تھے, تین دن تک ان لوگوں کو انتظار کیوں کروایا؟ کئی دفعہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے, خدا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے کئی دفعہ زیادہ وقت تک خدا میں کسی سچویشن میں رہنے دیتا ہے. کئی دفعہ خدا اپنی قدرت, اپنا اب دیکھیں کہ ہم خدا کو, خدا کے کئی روپ جو ہیں سادہ لفظوں میں, اس کو ہم جانتے ہیں, اور کچھ جو روپ ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. اسی لیے تو خدا نے ابراہم کو جو وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا اور تیری نسل کو بہت بڑھاؤں گا, اور تیری نسل کے وسیلے سے ہی دنیا کے تمام قبیلے برکت پائیں گے, جس میں سے یعنی مسیح آئے گا اور مسیح کے وسیلے سے تمام قبیلے برکت پائیں گے, جیسے ہم نے بھی آج پائی ہے, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو خدا پہلے دن ہی اس کو بیٹا دے سکتا تھا, اسحاق دے سکتا تھا, لیکن 25 سال کے بعد, کیونکہ 25 سالوں میں خدا ابراہم اور اماں سارا کو اپنا پورے طور پر دکھانا چاہتا تھا, تاکہ وہ خدا کو پورے طور سے سمجھ سکے, جان سکے. اس لیے خدا نے اس کو اگر کہا کہ میں تیری سپر ہوں, مثال کے طور پر پیدائش کی کتاب اور اس کا 15 باب یا اتپتی, دا بک آف جینیسس چیپٹر 15 verses 1-3, خدا نے کہا اگر کہ میں تیرا بہت بڑا اجر اور تیری سپر ہوں. چیپٹر 17 بھی پڑھے تو پھر خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا, ٹھیک ہے. خدا نے پھر کہا کہ میں ایل سدائی ہوں, یعنی میں قادر مطلق ہوں, یعنی میں سرو شکتی مان ہوں, میرے لیے سب کچھ ممکن ہے. تو خدا اپنا ریولیشن ان کو دینا چاہتا تھا. خدا یسوع مسیح دراصل ان کو ریولیشن دینا چاہتے تھے, اس بڑی بھیڑ کو, کہ میں صرف شافی ہی نہیں ہوں بلکہ میں سب کچھ مہیا کرنے والا ہوں, ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں. اور شاگرد جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ خداوند لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ وہ ساتھ والے گاؤں سے جا کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں, کیونکہ 3 دن سے پیچھے پھر رہے ہیں, جو جن کے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ چلے جائیں گے تو جس مقصد کے لیے 3 دن تک مریض بیمار لوگ پیچھے پھر رہے تھے, اندھے اور لنگڑے اور شاید مختلف بیماریوں کے مریض, انکیوریبل ڈیزیز والے لوگ جو تھے, ऐसी बीमारियों वाले जो किसी तरह शिफा नहीं पा सकते थे, वो तमाम लोग भी। तो फिर इनकी सेक्रीफाइस भी जाया हो जाएगी, और मैं तो अपना रेवलेशन इनको देना चाहता हूं, अपना प्रकाश, अपना मुकाशवा इनको देना चाहता हूं। और कलाम में लिखा है कि शागिर्द जो थे उन्होंने लोगों को कितारों में बिठा दिया, और इससे पहले खुदाम यीशु मसीह के हुक्म से, और शागिर्दों ने कहा कि यहां हमारे पास सिर्फ एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। खुदाम यीशु मसीह ने जैसे छू दिया और आसमान की तरफ देखने का मकसद यह था, लिखा खुदाम यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा ताकि इसराइली कौम को याद दिलाए कि आसमान से जो मन बरसाने वाला था वो मैं ही हूं, और अब भी मन बरसेगा। ये 5 रोटियां और 2 मछलियां जो हैं, हजारों हजार लोग खा जाएंगे, शेर हो जाएंगे, फिर भी 12 टुकड़े बच जाएंगे। ये रेवलेशन खुदा यीशु मसीह उनको देना चाहते थे, और उन्होंने ये रेवलेशन दिया। अगर आपको भी किसी चीज की कमी हो, जरूरत हो, कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी बात सुने, खुदा ने मुझे ये कलाम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त जरूरतमंद हैं, और खुदा यीशु मसीह क्रिसमस से पहले पहले आपकी जरूरत को, हर जरूरत को पूरा करेगा। ये प्रोफेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, और आप फोन करके गवाही देंगे, पाजी साहब खुदा ने बड़ा मुआवजा कर दिया है, मेरी हर जरूरत ही पूरी होगी, हर जरूरत पूरी होगी। खुदा ने आपके लिए अपने फरिश्तों को रिलीज कर दिया है, मसा जो पागरू का मसा है, अनॉइंटिंग है, वो आपके घरों में उतराई है ताकि आपकी हर जरूरत पूरी हो, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, मादी हो, माली हो, खानदानी हो, हर जरूरत पूरी होगी खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, प्रेज गॉड। एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। प्यारे खुदा यीशु मसीह, तेरा शुक्र, तू सचमुच रहम से भरा हुआ है, और तू हमें रोज बरोज अपना मुकाशवा देता है। तेरा शुक्र, तू हर जरूरत को पूरा करता है और अपने तमाम लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, और तू मेरी और मेरे घराने, मेरे बीवी बच्चों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, ओ तेरी तारीफ, और नए दरवाजे खुल रहे हैं। तेरा शुक्र करता हूं, हर जरूरतमंद की जरूरत खुदा यीशु मसीह के नाम से पूरी हो रही है, और बीमार खुदा यीशु मसीह के नाम से आज ही शिफा पा रहे हैं। आसमान खुला है और बड़े जोर से खुदा का मसा लोगों पर उतरा हुआ है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, और अंधेरे की कुवतें भाग रही हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। जादू टूने के बंधन और जो लानतें लोगों ने की हैं, कुछ लोग कलीसिया पर लानत करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदा उनको भी बरकत दे, वो भी आज शाम की बरकत में शामिल हो खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, प्रेज गॉड। अभी हमारे पास 15-16 मिनट्स हैं, और अभी टेलीफोन लाइंस खोल दी जाएंगी। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। अगर आपको दुआ की जरूरत है तो आप दुआ कराने के लिए आप फोन कर सकते हैं, यहाँ लाइव फोन भी। और अगर किसी वजह से फोन आपका ना मिले तो आप बाद में भी मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, मोबाइल फोन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। खुदावंद आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, और हर जरूरत को पूरा करने वाला और शिफा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। ठीक है, तो फोन की लाइंस खुल चुकी हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। और अगर इसके बाद भी अगर किसी वजह से आप फोन ना कर सकें तो आप बाद में कॉल कर सकते हैं। Is the phone number same or it has been? Okay, same phone number है. तो आप call कर सकते हैं. अगर आपको दुआ की ज़रूरत है, तो खुदा का ख़ादिम होता हूँ मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ. और otherwise आप बाद में भी मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी फ़ोन कीजिएगा. मैं हमारे एक भाई है, मैं उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ. वो कनाडा में खुदा की खिदमत करते हैं. वो रेडियो के वसीले से खुदा का कलाम जो है लोगों तक पहुँचाते हैं. मैं इस वक्त मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, लेकिन आई वॉन्ट टू प्रे फॉर हिम. एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम उनके लिए दुआ करेंगे. क्रिसमस के सारे प्रोग्राम्स के लिए और खास तौर पर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में जो 16 दिसंबर को प्रोग्राम हो रहा है, इस चर्च में जहां पास्टर तारक भट्टी साहब खुदा की खिदमत करते हैं पेशवा के तौर पर या पास्टर के तौर पर, तो उस प्रोग्राम के लिए भी हम दुआ करेंगे. अगर आप उस प्रोग्राम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो आप पास्टर तारक भट्टी साहब से या वहाँ पर और काफ़ी सारे भट्टीज हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. बहनानी से या भाई अख्तर भट्टी से या जमील साहब से या हैप्पी भट्टी साहब से आप, या वहाँ उस कलीसिया के जो एल्डर हैं काशिफ साहब, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं. वो आपको इसकी मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे. तो आप सबको उसके साथ साथ मैं फिर से दावत भी देना चाहता हूँ. और इससे पहले कि मैं कॉलर से बात करूँ, मैं एक लम्हे के लिए अपने उस कैनेडियन भाई की खिदमत के लिए दुआ करना चाहता हूँ. प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ अपने उस प्यारे भाई के लिए जो कनाडा में तेरी खिदमत करते हैं रेडियो के वसीले से. उन पर, उनके घराने और उनके भाई पर रहम फरमाइए और उनकी जो रेडियो मिनिस्ट्री है उसको फलदार बना दीजिए. अपने सारे खादमों पर रहम कीजिए. और आसमानी बाप, ख़ास तौर पर मैं दुआ करता हूँ कि जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो मीटिंग होगी 16 को, उसमें तो अपना जलाल जाहिर करना, बल्कि तो जलाल जाहिर करेगा और तारीकी कुवतें भाग जाएंगी और तो अपना हाथ बढ़ाकर सारी कलीसिया को बरकत देगा. खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन. हेलो
हेलो, गुड इवनिंग पास्टर जी. सलाम
जनाब. पास्टर तारक भट्टी साहब, सलाम जी.
खाक साहब, तुम सलाम पेश कर रहे. बहुत खुशी हुई आज मैसेज सुन के. खुदा उन तुम बरकत दे.
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया.
ते जरा ये खुशियां का महीना है सारे सारे वास्ते. खुदा उन बाय से बरकत बनाए.
आमीन.
ते जिस तरह किसी ऑलरेडी इनविटेशन दे तो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में मैं चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट की कृषि आलो सब पर प्रमाण दावत देना के इस प्रोग्राम में शिरकत करके ते प्रोग्राम दे पाक नाम जरा सब वास्ते बाय से बरकत होए. तो उन्होंने ना जवेद डीन है जो कनाडा दे विच जिन्हें तुम जिक्र कर रहे सो.
अच्छा अच्छा जी. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू वेरी मच.
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी. जवेद डीन साहब को खुदा बरकत दे, उनकी खिदमत को बढ़ाए, फलदार बनाए. और हम अगले कॉलर से बात करते हैं. हेलो, नेक्स्ट कॉलर प्लीज. हेलो,
गुड इवनिंग पास्टर
जी. गुड इवनिंग मेरी भैन जी.
खुदावंद दा बहुत शुक्र है तुसी साडे नाल अज फिर.
अच्छा जी,
तानू वेख्या
ते. अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरी भैन.
अन्ने ते पास्टर जी मैसेज बहुत अच्छा सी हमेशा दी तरह.
अच्छा जी, प्रेज गॉड.
बहुत बरकत दे.
अच्छा जी,
ते मेरी फैमिली ली ते बच्चे ने.
अच्छा जी, ठीक है.
एक्चुअली मेरे लिए मेरा थोड़ा मौसमी गला गुला खराब है ते.
अच्छा जी, जरूर जरूर मेरी भैन. ठीक है, तू फोन रख दो, मैं दुआ करना. हां जी,
थैंक यू.
अच्छा जी, और मुझे याद आ गया कि आज का जो प्रोग्राम है ये एल्डर रजाक पीटर साहब, जिनका ताल्लुक प्रातो इटली से है, आज का प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया. हम खुदा का शुक्र करते हैं. खुदा उनको, उनके घराने को और बाकी जितने लोग इस खिदमत को सपोर्ट करते हैं, खुदा बाप उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे रहा है और देगा. कॉलर से बात करते हैं. हेलो,
हेलो भाई साहब, सलाम जी, श्यामल बोल रहा हूँ जी।
अच्छा जी, सलाम जनाब।
बहुत अच्छा लगा आपको आज देखकर और बहुत अच्छा मैसेज का।
अच्छा जी, खुदा
तो आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे।
बहुत शुक्रिया।
आप प्लीज हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए और खास तौर पर आदिल के लिए प्लीज आप दुआ करें।
अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप फोन रख लीजिए, मैं दुआ करता हूँ। हाँ जी, खुदा बाप, मैं तेरा बहुत शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि बहन नसरीन और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को छू कर बरकत दीजिए। बहन जी को मुकम्मल तौर पर शिफा दीजिए और उन भाई सैमुअल गिल साहब के लिए और बहन जी के लिए दुआ करता हूँ। बहन मरियम के लिए जो तेरी खादमा हैं और उनके बच्चों के लिए और आदल गिल साहब के लिए, उन्हें छू कर बरकत दीजिए। उनकी हर जरूरत अपने आसमान को खोल कर पूरी कीजिए खुदा यीशु मसीह के नाम से, ताकि उन्हें बड़ी तरक्की की राह नसीब हो। अपने नाम के जलाल की खातर कर्म की निगाह कर दीजिए। अपने पागलों को इन दोनों घरानों पर बड़े जोर से भेजिए खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, प्रेज गॉड। मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि हमारा जो क्रिसमस का एक स्पेन का प्रोग्राम था, वो असल में ये 17 तारीख का प्रोग्राम स्पेन में था, लेकिन शायद वो अभी हमारी बात उनसे चल रही है, शायद 10 तारीख को स्पेन में होगा क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम। तो अगर आप स्पेन में रहते हैं तो आप डॉक्टर हारून साहब से कांटेक्ट कीजिए। मैं भी आज इस प्रोग्राम के बाद फिर उनसे कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि काफ़ी देर में उनसे बातचीत नहीं कर सका। तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी के 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम जो है, यह 17 यानी 17 नू शायद स्पेन प्रोग्राम हुए। तो इसके हवाले से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक ट्यूसडे बता सकूंगा। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और मैं पास्टर हमारे जो दोस्त हैं बहुत ही अच्छे भाई नेल्सन में, पास्टर प्रवेश साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हीलिंग क्रूसेड का इंतज़ाम किया था, लेकिन मैं वहाँ पर किसी वजह से पहुँच नहीं सका था। मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ और फिर जल्द ही उनके साथ मेरी मुलाकात भी होगी। खुदावंद उनको और उनके घराने को और उनकी खिदमत को फलदार बनाए। तो अगर आप इसके बाद किसी तरह से इस खिदमत को अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो मुझे मालूम नहीं, मैं आपको बाद में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक रिक्वेस्ट मैंने डाली हुई है वो कैमरे के लिए। तो अगर आप उसमें मदद करना चाहें तो दैट विल बी ग्रेट। आप क्रिसमस का जो एक तरह से ये खुदा की खिदमत और खुदा की बादशाही में ये एक बीज ही होगा आपके लिए, आपकी तरफ से। और खुदा की बादशाही में जब हम बीज बोते हैं तो वो खाली नहीं जाता, बल्कि उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, जो कलाम हमने पढ़ा था आज, आप अगर उसको दोबारा सुनना चाहें तो आप YouTube पर ये तकरीबन एक घंटे के बाद अवेलेबल होगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ने बताया कि YouTube पर, क्योंकि ये लाइव होता था प्रोग्राम, लेकिन कुछ मेरे ख्याल सिस्टम की ख़राबी की वजह से अभी वो लाइव नहीं आप देख सकते, लेकिन बाद में आप इसको YouTube पर इस प्रोग्राम को, इसकी डेट साथ जब आप लिखेंगे 28/11/2017 तो MA TV नेशनल, तो इस पर आप, या MA TV आगे स्पेस छोड़कर नई खाली लिखें, आगे डेट लिखते हैं तो ये प्रोग्राम एक घंटे के बाद आप देख सकेंगे। तो एक हमारा प्रोग्राम बन रहा है, मुझे कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया है कि अपनी जो खुदा के कलाम की तालीम है इसको और ज़्यादा फैलाने के लिए अगर हम YouTube पर जो खुदा के कलाम की सच्चाई है या जो डॉक्ट्रिन है या जो थियोलॉजी की बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा सकें, तो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम शायद हफ्ते में एक प्रोग्राम जो है हम यूट्यूब पर डाल दिया करेंगे, एक या दो प्रोग्राम्स। तो जो कैमरा हम लेंगे उसमें वो काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि कुछ लोग जो खुदा के कलाम को ठीक तरह समझे नहीं वो असल में वो लोगों को तालीम से गुमराह भी कर रहे हैं, जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि वो भी शायद मुझसे ज़्यादा खुदा को प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको कलाम की ठीक समझ नहीं है तो वो अपने आप को दनाव बनाकर वो दरअसल लोगों को भी तालीम से सच्चाई से दूर कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप करना चाहें खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अभी मेरे पास क्योंकि 3 मिनट्स रह गए हैं, तो अगर आप बाद में हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर सोलंकी, हम उनके लिए ख़ास दुआ करना चाहते हैं और उनकी बेटी के लिए भी हम दुआ करेंगे एक लम्हे के लिए। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं मिस्टर और मिसेस सोलंकी के लिए और उनकी बेटियों के लिए, उनके बेटे के लिए। उन पर रहम फरमा, उस घराने पर करम की निगाह कर दे और उन्हें छू कर सर से पौं तक मुकम्मल शिफा बख्श दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से दुश्मन के सारे बंधन टूट जाए, हर तरह की बीमारी कमजोरी उनके बदनों से अब इसी वक्त चली जाए। तेरा शुक्र तूने दुआ सुन ली है खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लास्ट कॉलर प्लीज। हेलो
हेलो पाजी साहब, मैं अजरा बात कर रही हूँ।
जी जी इस्लाम जी, इस्लाम।
आज आपको देख के बहुत खुशी हुई।
अच्छा जी, बड़ी
टिकट मान थी कि आप कहाँ चले गए।
अच्छा जी,
लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज वापस आए।
अच्छा जी, थैंक यू।
और आज के कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो, आपके लिए, आपके खानदान के लिए खुदा का शुक्र हो।
अच्छा जी,
मैंने रिक्वेस्ट कर लिया पाजी साहब हम तीनों के लिए दुआ करें।
अच्छा जी,
और हैरी के भाई हैं अर्नेस्ट, अच्छा उनके लिए भी दुआ करें, वो बीमार हैं।
अच्छा जी, हम दुआ करें।
थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, गॉड ब्लेस यू।
गॉड ब्लेस यू।
खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ हरी साहब के लिए, बहन जी के लिए और उनकी बेटी के लिए, और खुदा बाप इनके हरी साहब के जो भाई हैं चांद साहब के, खुदा बाप तू उन्हें जानता है, उन पर रहम फरमा, करम की निगाह कर, प्यारे खुदा यीशु मसीह ने छू कर सर से पौं तक मुकम्मल ताजगी तंदुरुस्ती और रिहाई और शिफा बख्श दे, सारे बंधन उनकी जिंदगियों से टूट जाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से तू एक जलाली काम कर दे। तेरा शुक्र तूने दुआ सुन ली है खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, खुदा उनकी तारीफ हो। अगर आप इस खिदमत को सपोर्ट करना चाहें तो अगली दफ़ा मैं काफ़ी अरसे से मैं वैसे बैंक की डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मैं कर दूंगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप ओके या तो गॉड ब्लेस यू। अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे यूके टाइम के मुताबिक शाम 7:00।